الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يعلم المفسد من المصلح اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولايا صل وسلم دائما ابدا اللہ حبیب من زانت بن سرو. معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاد ہے اور اللہ مصلحت کا خیال رکھنے والے نہ رکھنے والے اور رکھنے والے دونوں کو جانتے ہیں. معزز سامعین کرام یہ آیہ کریمہ کا درمیانی حصہ ہے اور اس سے بیشتر حصے میں اللہ کریم نے یتیموں کے حوالے سے جو ارشاد ہے وہ فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى اور آپ سے یتیموں کے بارے پوچھتے ہیں. رہنمائی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جو سوالات عرض کیے گئے یا ان میں سے اس سوال کا بیان ہے جو یتیموں سے متعلق ہے. فرمایا قُلْ اِصْلَاحُ لَهُمْ خَيْر فرما دیجئے کہ ان کی مصلحت کا خیال رکھنا بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فرمایا اور اگر تم ان کے مال کو ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. اس حصے کے شان نزول میں یہ بھی ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ جب یتیم کے مال سے احتیاط برتنے کا حکم فرمایا گیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس درجے کی احتیاط برتنا شروع کر دیا آپ ان ہستیوں نے کہ ان کے حصے سے اگر کوئی شے پکائی جائے کھانے کے لیے بھی تو جتنا استعمال وہ کریں دوسرا اس میں سے کھاتا بھی نہیں تھا کہ یہ مال یتیم کا ہے اور کہیں اس کے حصے کا کھانا ہمارے لیے جرم نہ ہو جائے. تو بے شمار اور پہلو بھی ساتھ ہوں گے یقیناً ہوں گے. تو جب یتیم سے متعلق آپ کے حضور سوال عرض کیا گیا تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی مصلحت کا ان کی بہتری کا خیال رکھیں. یتیم وہ کیفیت اور حال ہے جو اس دنیا میں ایک کمزور حیثیت ہے اور انسانی حیات میں ایسا پہلو نہیں ہے کہ کوئی انوکھی بات ہے. یہ بنی نوع انسان کے ساتھ جہاں زندگی ہے وہاں موت ہے اور جہاں موت اور زندگی ہے اوقات کا تعین ہے کس کی کس عمر تک فرصت ہے کس کے بطن سے کون اور کتنا عدد ہوگا جو پیدا ہوں گے. تو یہ وہ باتیں ہیں معزز سامعین کرام جو انسانی زندگی کا حصہ ہے. اب اس حصے میں جس کی پیدائش ہے اس کے گرد و پیش کے حالات ہیں انہی میں ایسا بھی پیدائش ہے جو یتیم ہوتا ہے ایسے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں جو پیدا تو یتیم نہیں ہوتے لیکن وقت کے ساتھ ان کے والدین میں سے زندگی جب پوری ہو جائے تو ان کی وفات کے ساتھ وہ کمزوری جو یتیمی کی کیفیت سے اس میں چلے جاتے ہیں. تو انسانی معاشرے کے خد و خال اللہ کریم کے حکم پر تعمیر کیے جائیں تو ہر حصے کو تقویت نصیب ہوتی. جو انسانی معاشرہ طاقت رکھتا ہے قوت رکھتا ہے اس کے لیے بہتری یہ ہے کہ اس کی قوت کا جو مصرف ہے وہ جائز ہو وہ زائد نہ ہو یعنی کہیں ظلم میں نہ بدل جائے. تو دین اسلام اس کی حدود و قیود بھی مقرر فرما دیتا ہے. اسی طرح جو انسانی معاشرے میں حصہ کمزور ہے دین اسلام اس کے جہاں تحفظ کا ارشاد فرماتا ہے وہاں اس کی ضروریات کی تکمیل جو ہے اس سے متعلق بھی جو صاحب استطاعت ہے اسے حکم اور ترغیب دیتا ہے. اب جب حکم کی بات آتی ہے تو وہ حصہ جو فرض ہے یعنی جیسے زکوٰۃ ترغیب یعنی جیسے صدقات ہیں جیسے زائد ضرورت مال کا اللہ کی راہ اور اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنا ہے تو اسی طرح جب یتیم کی بات آتی ہے تو اس پہلو کو بھی क्योंकि ये एक हकीकत है, जब तक इंसानी हयात है तब तक ये पहलू साथ हैं। और ये कैफियत और हाल यतीमी की, इसमें कि किसी का माल हो लेकिन जो बच्चे हैं वो मासूम हों, कम उम्र हों, और उन्हें ये ख्याल न हो, ये समझ न हो कि कहाँ बेहतरी है और कहाँ जो है वो अपना नुकसान खुद अपने हाथों कर बैठे। तो फरमाया कुल इस्लाहुल्लहुम खैर, उनकी मसलत का ख्याल रखना बेहतर है। मसलत उनकी बेहतरी, जिसमें उनके लिए बेहतर हो, जिसमें उनके लिए इस्लाह मकसूद हो। और जब फरमाया और अगर तुम उनके माल को साथ मिला लो तो वो तुम्हारे भाई हैं, फ़इख्वानुकुम, तो तुम्हारे भाई हैं। अब साथ मिलाने से ये मुराद नहीं है कि उनका माल ऐसे साथ मिलाया जाए कि जो अखराजात इज्तमाई तौर पर हो रहे हैं उसमें खर्च उनके हिस्से से ज्यादा आ जाए। जो निस्बत अखराजात की है, यानी अगर आप किसी का माल साथ मिला रहे हैं और वो दो अफराद हैं, आप अपने खानदान को देखते हैं, आपकी अदद उनसे दो गुना है, तो जब खर्च होगा तो इसी निस्बत से, जहां खर्च एक हिस्सा उनके पास आएगा, उनके उस हिस्से में से आएगा, इसी तरह दो हिस्से आपको देने होंगे। तो ये नहीं है कि उनका माल नाजायज तौर पर खर्च किया जाए। फरमाया वो तुम्हारे भाई हैं। वल्लाहु यालमुल मुफ्सिदा मिनल मुस्लिह, और अल्लाह मसलत का ख्याल न रखने वाले यानी फसाद करने वाले, मुफसिद मिनल मुस्लिह, और जो इसलाह करने वाला है, जो मसलत का ख्याल रखता है, अल्लाह करीम ने फरमाया और रखने वाले दोनों को जानते हैं। मौजूद सामीन कराम, इस इरशाद बारी ताला को इसी हुक्म की निस्बत से देखें, इसी आया करीमा के तसलसल में देखें, तो जो अमल कोई कर रहा है अल्लाह करीम उससे वाकिफ है। किस नीयत से कर रहा है अल्लाह करीम ये भी जानते हैं, और जब ये अमल करने वाला था ही नहीं तो रोजे अजल तक इब्तदा से इंतहा तक अल्लाह करीम जानते हैं कि कब किसने कहाँ होना है और उसने क्या अमल करना है। हर शय उसके दस्ते कुदरत से है, और अल्लाह जल्ला शानुहु वफूरुर रहीम जो है कादरे मुतलिक है। तो जो हम अपने मामलाते जिंदगी में एक बुजुर्गी, एक वरा तकवा चाहते हैं जिसका इजहार हो, तो समझ आती है इसके इजहार की जरूरत नहीं है। अमल साले इख्तियार करो, इसलाह करने वाले को अल्लाह करीम की जात खूब जानती। अब अगर हम ये समझें कि मखलूक भी ये समझे कि ये शख्स जो है ये बड़ा बुजुर्ग है, बड़ा नेक और साले है, तो क्या अहकामात मखलूक ने दिए हैं कि हम इस जवाब में उनके लिए ये अमल करें? और अल्लाह करीम ने जो हुक्म दिया है इस इसलाह के लिए या साले इकदाम जो है उठाने के लिए, या दीन इस्लाम जो तरगीब हमें दे रहा है अमली सूरत तक के हिस्सों तक, इस सारे के किसी एक पहलू को तहकीक कर लें, उसमें जैसे हुक्म दिया जा रहा है उसका फायदा है। जहां से हुक्म दिया जा रहा है उसकी जात बेनियाज है। और जब हम अपनी बुजुर्गी का इजहार चाहते हैं कि लोग माने कि मैं बड़ा नेक और साली हूं और मैं बड़ा मसलत का ख्याल रखता हूं, तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि उसकी जात अलीम है, वो खूब जानता है जो कुछ कोई कर रहा है और जो कुछ कोई चाह रहा है। वल्लाहु यालमुल मुफ्सिदा, जहां कोई फसाद करता है, जो साले काम है उससे इज्तनाब करता है, दूर होता है, तो अल्लाह करीम जानते हैं। मिनल मुस्लिह, और जो इसलाह करने वाले हैं, जो बेहतर अमल करने वाले हैं, अल्लाह करीम उसे भी जानते। अब ये यकीन नसीब हो, आप गौर फरमाए हमारे अमाल कैसे हों, अमाल की निस्बत क्या हो, क्या हमें ये दरकार है कि मखलूक राजी हो, मखलूक हमें माने, जो अमल हम कर रहे हैं क्या जात के मनवाने को कर रहे हैं, तो जब अपनी सोच और अमल को हम टटोलेंगे, उसे तराजू पर रखेंगे, तो हमें समझ आ जाएगी कि हमारा मामला क्या है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के अकवाल में से एक इरशाद ये भी मिलता है कि आज अपना आप जो है और अपने मामलात जो हैं उसे देखभाल लें, उसे खुद समझ लें, उसका एहतसाब खुद कर लें, इससे पेशतर कि इसका हिसाब किया जाए। तो अगर हम अपने मामूलात में इसलाह चाहते हैं तो जो कुछ हम कर रहे हैं उसे अहकामात दीन के मुताबिक देखना होगा, जहां कमी बेशी है उसे छोड़नी होगी। और अगर हम ये समझते हैं कि कुछ साले बात हो रही है, हम उससे इतफाक भी करते हैं और साथ ये कहते हैं कि जी हाँ ठीक है, अच्छा है, तो जब मुझसे हुआ कर लूंगा, हो नहीं पा रहा, दिल कुछ और चाह रहा है, हालात कुछ और हैं, तो ये वो कमजोरी है जो हम अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए कर रहे हैं। तो अल्लाह करीम तौफीक अमल अता फरमाए, दीन की समझ अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। और इससे क्या सरोकार होना चाहिए कि मखलूक क्या राय काम करती है। हाँ, मेरा कहने से मुराद ये नहीं है कि हम वो अमल करें या उस तरह मखलूक से पेश आए कि लोग हमसे दूर हों। मकसद ये है कि जो हुक्म तामील का अल्लाह करीम ने अता फरमाया है, तामील उस हुक्म की करनी है और एहसान मखलूक पर जताना है। तो न ये एहसान खालिक की निस्बत है और न ये एहसान मखलूक पर जताने की जरूरत है, चूंकि ऐसा है नहीं। और दीनी अहकामात हर पहलू से आप ले लें, उसमें जिसे हुक्म दिया गया है उसकी बेहतरी है। हम मामूलात दुनिया में देखते हैं हैसियत का फर्क होता है। साहिब हैसियत किसी अपने कमजोर तबके के बंदे को कुछ कहता है तो ये जरूरी नहीं है कि इसमें उस कमजोर तबके की बेहतरी हो। वो अपने मसले का हल चाहता है या अपनी ख्वाहिश की तकमील चाहता है। इसी निस्बत को खालिक की तरफ समझना बहुत बड़ी भूल है, वह बहुत बड़ी गलती है। आप कोई हिस्सा उठा लें हुक्म का, आपकी जरूरत है। शरायती ईमान उठा लें, मेरी और आपकी जरूरत है। ईमान के हिस्से अगर इबादात से मुतल्लिक उठाने हैं, उठा लें, मेरी और आपकी जरूरत है। आप मामलात के हिस्सों को देख लें, मेरी और आपकी जरूरत है। तो मज़ा सामिन कराम, जहां जरूरत हमारी पूरी हो रही है तो उस हुक्म की तामील में तो मजीद शुक्र गुजारी की जरूरत है कि अल्लाह का शुक्र किया जाए कि अल्लाह करीम ने इतना सहल हुक्म अता फरमा, ऐसा हुक्म अता फरमा जो हर पहलू से हमारे लिए भलाई है। अब दुनिया की जिंदगी के अहकामात आप देखें कि बंदे मोमिन की दुनिया आखरत की तामीर का सबब, और जो फितरत इंसानी में है कि उसने किसी मजहब को इख्तियार करना है, कोई ना कोई जगह ऐसी है जहां उसने अपनी पेशानी टेकनी है, तो जो काफिर मुशरिक है उसका दीन भी दुनिया है। इसलिए कि वो जो अमल कर रहा होता है उसके साथ मकसूद दुनिया की भलाई चाह रहा होता है। तो अगर यही निस्बत बंदे मोमिन इख्तियार कर ले कि मैं जो तस्बीहात पढ़ूंगा इससे दुनिया का ये मकाम हासिल होगा, इससे लोग मेरे पीछे होंगे और मेरी जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी होंगी, तो क्या जा रहे हो? दीन से दुनिया तामीर करना चाह रहे। हालांकि दुनियावी अहकामात अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इख्तियार करो, जो तरबियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई उसे इख्तियार करो, उसमें कुल फलाह है, हर पहलू से फलाह है। दुनिया की जिंदगी में फलाह है, तेरी जात की फलाह है, तेरे अजीज व अकारब यानी गिर्दो पेशे लेकर इंसानियत तक चले जाओ, फिर इसी में आखरत की तामीर है। इसलिए बंदे मोमिन की जो दुनिया है ये भी आखरत की तामीर होती है, और दीन जो है उसमें तामील होती है, क्योंकि दुनियावी अहकामात में इत्तबा जो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसीब होगा तो यही दीन है। तो जब यही दीन है तो आखरत की तामीर इसी पर होगी। जो कुफ्र व शिर्क करते हैं तो काफिर व मुशरिक जो है उसका दीन भी दुनिया है, क्योंकि वो सौदे कर रहा होता है, ये करूंगा अमल और ये इबादत करूंगा तो ये हासिल हो। तो अल्लाह करीम ये नज़ाकत समझने की तौफीक अता फरमाए। तो ये ना सोचा जाए कोई शह मुबह हर शय वाजे है और हर शय का हिसाब होगा। वलव शा अल्लाह लअनतकुम, फरमाया और अगर अल्लाह चाहते तो तुम्हें मुशक्कत में मुबतला कर देते। अब जो तुम एहसान समझ रहे हो कि एक यतीम की कफालत कर रहा हूँ, अजीज व गारिब है उनके साथ भलाई कर रहा हूँ, तो ये मामला या ये माजरा जो है ये तुम्हारे साथ भी पेश हो सकता था। अगर तुझसे अल्लाह करीम ने किसी की तवक्कु वाबस्ता की है तो ये उसका एहसान है, तेरी जगह पर वो भी हो सकता था और तू उसकी जगह पर भी हो सकता था। और ये मामला ऐसा नहीं है कि बात गुजर गई, जो जिंदगी बाकी बचती है मौजूद सामने कराम, जिस लम्हे में कोई ये सोच रहा है कि मैं दूसरे का जो है मसाइल का हल हूं, एन उस लम्हे उसे भी ये कमजोरी वाकई हो सकती है कि वो भी मोहताज हो जाए। तो ये हमारी जिंदगी में रोजमर्रा मिसालें हैं। बड़े खूबसूरत सेहत के मालिक तवाना लोग मजबूर हो जाते, बड़े खाते पीते साहिब हैसियत हैं वो गदागरी पर मजबूर हो जाते, और कितने कमजोर तबके हैं कि वो दुनिया की ताकत उनके पास पहुंच जाती है। तो जो नुक्ता समझने की जरूरत है वो ये है कि जो जहां है जिस हैसियत में है, बात तामील की है कि अल्लाह के हुक्म के तहत कितना है। तो फरमाया और अगर अल्लाह चाहते तो तुम्हें भी मुशक्कत में मुबतला कर देते, तो ये एहसान न जताओ कि तुम बड़ा एहसान कर रहे हो या तुम उसकी मदद कर रहे हो। फरमाया फ़ख्वानुकुम, भाई भाईचारे का दर्स है कुरान करीम की आयात। आप कितने ही पहलुओं से उनसे रहनुमाई हासिल करती हैं, मालिक का कलाम है, मखलूक की रहनुमाई। फ़इख्वानुकुम, तो भाईचारा कितनी नज़ाकत सिखाता है दीन इस्लाम। और दुनिया की जिंदगी हमें बताती है कि ये तेरी जिंदगी है, जो तू चाहता है वो कर। अल्लाह करीम जिसने पैदा फरमाया, जिसने इस्तेआत अता फरमाई, वो तुम्हारी जरूरत और तुम्हारी इस्तेआत और तुम्हारी भलाई और तुम्हारे गिरदो पेश तक की भलाई, और यही हिस्से उखरवी हयात की तामीर। तो कितने ही पहलू हैं जिसमें हमें अल्लाह के हुक्म में जो है वो भलाई नसीब होती है। तो ये एहसान न जताओ कि शायद तुम एहसान कर रहे हो, ये अल्लाह करीम की अता है कि किसी को किसी की जरूरत या किसी की तवक्को उसने तुम्हारी निस्बत की है। हजरत जी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुझे इरशाद फरमाया, आपने फरमाया बेटा अगर कोई तुझे काम कहे, अब ये बिलमूम बात इरशाद फरमाई जा रही थी, दुनियावी नुक्ता नजर जो है इस बात में गालिब था कि जो लोग आते हैं कसरत से उनका हिस्सा ख्याल ये होता है कि दुनियावी जो है उमूर उसमें मुआवनत मिले। तो आपने मुझे फरमाया, आपने फरमाया मेरा बेटा आने वाला जो सवाल कर रहा है ये ना देखो कि तुम उसे जानते हो या नहीं जानते, ये देखा करो कि अल्लाह करीम ने किसी की तवक्को तुमसे वाबस्ता की है, तो जो हो सके उसकी मुआवनत करो। ये भी हो सकता था कि वो जो सवाल करने वाले की जगह वो तुम्हारी होती और जहां तुम बैठे हो वो सवाल करने वाला वहां बैठा। तो ये उसका एहसान है कि मखलूक की तवक्को तुमसे वाबस्ता करे, ये उसका एहसान जानो और उसकी खुशनूदी में जो हो सके अपने तई भरपूर कोशिश करो कि उसमें कमी ना आए। अब इसी पहलू को आप दीनी हिस्से में देखें और इस पहलू को आप दुनियावी हिस्से में देखें। दीन इस्लाम कैसा जामे हुक्म है जो हर निस्बत से फायदा देता है और हर निस्बत से इसका अमल जो है मुस्बत है। इन्नल्लाह अजीजुन हकीम, यकीनन अल्लाह गालिब हैं और हिकमत वाले हैं, यानी कोई शय उसके दस्ते कुदरत से बाहर नहीं है और उसका हुक्म उसकी वो हकीम है, उसका हुक्म जो है हिकमत से भरा होता है। अब इसमें क्या हिकमत है, सादा सा एक पहलू अर्ज करता हूं। चूंकि जरूरियात जिंदगी या ख्वाहिशात में हमारी जिंदगी जो है उलझी हुई है और इसी निस्बत से जिसके पास जरा सा भी इख्तियार है वो समझता है कि शायद सारी कुव्वत मेरे पास। इसी में अर्ज करता हूं, इसी मिसाल में, अब जो मुआवनत के लिए जा रहा है अगर तो वो उसकी नीयत या उसकी समझ या उसकी ख्वाहिश या तलब सबब से बढ़ जाती है तो वो खता खा गया। इसी निस्बत से जिसके पास इख्तियार है उस इख्तियार की निस्बत वो अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ नहीं करता जात की तरफ करता फिर वो भी खता खा गया। अब जो दायरे दुनिया की जरूरत तकमीली हिस्सों में कहीं चला या कहीं बात की तो उसने सबब इख्तियार किया लेकिन तवक्कल अल्लाह, अल्लाह पर तवक्कल है, अपना सबब पूरा किया है, मामला अल्लाह के सपुर्द, तो बात और। अब कमजोर है, जरूरतमंद है, हाजतमंद है, जायज हदूद जो दीन ने मुकर्रर फरमाई है उसके तहत मुआवनत चाहता है, उसके तहत उमूर की सरंजामदही चाहता है, बात और। इसी तरह जिसे इख्तियार दिया वो इख्तियार जाती समझता है, अल्लाह की अता नहीं समझता, तो बात और हो जाएगी। इसकी निस्बत बात आएगी कि तो जो खालक से निस्बत रखनी थी तू मखलूक से रखता है, और जिसे निस्बत जाहिरी हिस्सों में इख्तियार की दी है तो उसे ये नहीं समझना था कि माल अल्लाह का है, मखलूक अल्लाह की है, उसके हुक्म के मुताबिक मैंने अमल करना है, वो सारी निस्बत जात पर ले गए तो वो खता था। इसी तरह जब मामलात में हम जाते हैं, और ये सुन्नत है कि दुनिया का सबब इख्तियार किया जाए फिर मामला अल्लाह के सुपुर्द किया जाए। आज हम दुनिया के असबाब को कुल समझते हैं तो भी खता है, और अगर ये समझते हैं कि दुआ की जाए और दुनिया का जो असलूब है उसे छोड़ दिया जाए तो ये मामला भी दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि सुन्नत यह है कि असबाब इख्तियार कर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस आप दुआ फरमाएं, शर्फ़े कबूलियत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमानी है, अरीशे बदर में आप दुआ फरमा रहे हैं मुसलमानों की फतह की, मदीना मुनव्वरा में आपने दुआ क्यों नहीं फरमाई? 313 असहाब और समान हर्ब तो कुजा, लिबास पूरा नहीं, ब मुश्किल सतर ढांप रहे हैं, और खुराक क्या है, एक एक खजूर जो है वो हिस्से की एक खाने के साथ मिल रही है, सवारी पूरी नहीं, सामान अर्ब पूरा नहीं, जरा और डाल तो कहां की बात है, चादर जो है ब मुश्किल पूरी है इस लश्कर इस्लामी के साथ जो सतर ढांप रही है। लेकिन जो कुछ है सबब में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा फरमाया, उसके बाद फिर दुआ फरमाई, और इतनी दुआ फरमाई कि हज़रत बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस फरमाए, अल्लाह करीम कबूल फरमाएंगे। आज अगर हम ये कहें कि जो कुछ है ये दुनिया है तो भी दुनिया गलत है, और आज अगर हम ये कहें कि सारी बात दुआ पर है सबब छोड़ दूं तो ये असूल के खिलाफ है जो रब्बे कायनात ने असूल अता फरमाया है, ये तरबियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। अब अगर कोई ये कहे कि तुम कह रहे हो कि दुआ का इनसार नहीं है, तो मैं ये नहीं कह रहा, दुआ का मकाम इबादत है, दुआ का मकाम शर्फ़े हम कलामी है अल्लाह रब्बुल आलमीन से, उसके असूल पर बात कर रहा हूं कि वो असूल इख्तियार किए जाएं जिसकी तालीम दीन इस्लाम देता है, तो हर पहलू से जो है वो सुख होगा, दुनिया की जिंदगी में भी सुख होगा, और वो सुख जो हमेशा का है वो भी नसीब होगा अल्लाह के करम और उसके एहसान से। और ये जो फरमाया गया इन अल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, यकीनन अल्लाह ग़ालिब, कोई शय उसके दस्ते कुदरत से बाहर नहीं है, तो फरमाए मुझे जो हिकमत है हर बात में हिकमत है, तामील देखो हिकमत पालो, जात या अकल और अपने शऊर के घमंड में हिकमत के मुतलाशी रहोगे तो अमल खो बैठोगे। तो गैर मशरूत इताअत है और क्या खूबसूरत मौजूद सामीन कराम रिश्ता है। गिर्दोपेश देखो, अजीज व अकारब में देखो, अपने बड़ों में देखो, दुनियावी हैसियतों में देखो, कहां ये निस्बत मिलती है कि गैर मशरूत मान लिया जाए और हर पहलू से फायदा हो। और क्या अजमत है कि अल्लाह का दर नसीब हो रहा है, और अल्लाह का दर नसीब है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा, तो गैर मशरूत इताअत कौन सा ऐसा मकाम है जिसे ये अजमत हासिल हो। जहां गैर मशरूत जाओगे ठोकर खाओगे, धक्के खाओगे, तकलीफ सहोगे, और ऐसी तकलीफ पैदा होगी जो इख्तिताम पजीर नहीं होगी, आखरत तक वो सख्तियां जो हैं वो चलती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। ऐसा दर नसीब जो मुस्तगनी कर दे। किसी दोस्त ने मुझसे पूछा दुनियावी हवाले से कि कोई तलब, तो अमूमी गुफ्तगू थी, तो मैंने उससे अर्ज किया मुझे एक बात बताओ, अल्लाह करीम ने अपने घर के दरवाजे पर मुझे बिठाया है, यानी खाने खुदा में बैठना नसीब हुआ, अल्लाह का दर है, अल्लाह का घर है मस्जिद, इसके दर पर उसने मुझे बिठाया, इससे बढ़कर कोई शय या कोई शख्स कोई फर्द ऐसा है जो मुझे इससे बढ़कर कुछ दे सकता है? कौन है यार जो इससे बढ़कर मुझे देगा? उसने अपने दर पर बिठाया तो ये बैठना मुस्तगनी कर देता है हर शय से। तो एक लहजे को सोचे तो सही, ऐसा रिश्ता नसीब हो बंदगी का, ऐसा रिश्ता नसीब हो उम्मती का, जहां गैर मशरूत इताअत हो और हर शय हर मामला सपुर्द कर दिया जाए। तो क्या खूबसूरत अता है। अब बात रिश्ते की है, बात समझ, बात तौफीक की है, और ये इन हिस्सों का इन्हिसार हमारी नियतों पर है, हमारे किरदार पर है। अमाल साले हैं तो मामला और है, बुरे करतूत हैं तो फिर माजरा मियां और होगा। इन्नल्लाह अजीजुन हकीम, अल्लाह गालिब है, हर पहलू से, हर हुक्म में, हर बात में हिकमत है। ये जज्बा जो ईमानी है ये नसीब हो, ये खुशबख्ती है। मज़ा सामने कर फरमाया वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन्ना, और मुशरिक औरतों से उनके ईमान लाने तक निकाह ना करो। अब यहां दूसरा मौजू इस अगली आया करीमा में शुरू होता है कि ये भी मामला था कि जो अहले किताब हैं उनसे निकाह और खाना, इस पहलुओं से कुरान करीम में बयान फरमाया गया। और अहले किताब में भी जहां हुक्म है, ईमान वाले मर्द की निस्बत इजाजत है, ईमान वाले औरत की तरफ नहीं, इरशाद फरमाई गई। अब जब ये फरमाया गया वला तनकिहुल मुशरिकात, तो काफिर मुशरिक ये वो तबका है जो मौजूद था गिर्दोपेश, सारी कोशिश होती थी कि हक को रोका जाए, और जो बुनियादी इंसानी बका है ये मर्द और औरत में अल्लाह करीम ने रखी है, ये नस्ल इंसानी का सबब अल्लाह करीम ने बनाया है, इसे बकाए इंसानी की बुनियाद अल्लाह करीम ने बनाया है। अब जब निकाह की बात आती है तो बंदे मोमिन का वो मुआयदा जो खातून और मर्द के माँ बहन है, ये अल्लाह के नाम पर होता है। निकाह क्या है? अल्लाह के नाम पर एक मुआयदा है। अब जब अल्लाह के नाम पर एक मुआयदा है तो एक फरीक ईमान वाला हो और दूसरा फरीक ईमान न रखता हो, तो जो साहिब ईमान नहीं है उसका मुआयदा अल्लाह के नाम पर कैसे हो सकता है? ये निकाह सादर ही नहीं होता। अहले किताब के हवाले से जो फरमाया गया है, अहले किताब मुशरिक न थे, लेकिन दावा अहले किताब होना और साथ शिर्क करना ये अहले किताब होने से बाहर निकाल देता है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने मुबारक में जब खिलाफत इस्लामी को वुसअत मिली उन इलाकों तक कि जहां अहले किताब के दावे के साथ शिर्क था, तो जब वहां बात गई तो मुसलमानों ने निकाह किए, क्योंकि फरमाया गया कि अहले किताब के साथ निकाह जायज। तो जब ये इतला आप तक पहुंची तो आपने सब बातिल कर दी और वो ख्वातीन वापस कर दी। फरमाया कि जो अल्लाह के साथ शिर्क कर रहा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहता है, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को कोई अल्लाह का बेटा कहता है, तो ये मुशरिक है। कुरान करीम ने हुक्म दिया वला तनखुल मुशरिकात हत्ता युम, जब तक ईमान नहीं लाएंगे। अब अहले किताब को ये कहना कि चूंकि ये दावा अहले किताब का है तो अमल क्या अहले किताब का है? तो जो अल्लाह करीम की जात है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अकदस तक, मोहतरम सामईन कराम जो बुनियाद है वो तौहीद बताएंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाह कोई इलाह नहीं है, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। तो कोई कहे उसके साथ शरीक करे, और मुशरिक किसे कहते हैं जो उसकी जात उसकी सिफात में किसी को शरीक जाने, और मुशरिक क्या हो, शिर्क क्या है? तो जब बात मुशरिक से मना फरमाया गया है तो उसका अहले किताब होना ही नहीं रहा। और जब बेशत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुई तो तमाम साबका अहकामात जो हैं वो खत्म है, और हुक्म वो माना जाएगा जिसकी तामील का हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और इस पहलू से ये नहीं है कि किसी मजहब का इख्तियार करना जो इस्लाम से बाहर है उसके साथ हम ज्यादती कर रहे हैं, असूल बयान कर रहे हैं, जो दीनी असूल है उसे बयान कर रहे हैं। फिर इन्हीं अकामात को ख्वाहिशाते जाती की नस्बत तकमील में ले जाना, तो मियाँ वैसे कहे तो मैं ये गलती कर रहा हूं, बात और होगी। मान लो कि जो कर रहा हूं ये गलत है, गुनहगार होगे, उस हुक्म को बदलना चाहते हो तो ईमान से खारिज हो जाओगे। अमल ना जायज है, तुम उसे जायज करार देते हो तो फिर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मुकाबिल तुम एक फिका ले आए हो ना, मुताबिक रहो तो गुनहगार होगे, मुकाबिल होगे तो बेईमान हो जाओगे। तो फरमाया और मुशरिक औरतों से उनके ईमान लाने तक निकाह ना करो। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई जो निकाह करता है किसी औरत से तो चार बुनियादी जो हैं इससे उसके सामने होते हैं। तो उसमें फरमाया उसका उसका माल है, उसका जमाल है, उसका हस्ब है, और उसका दीन। तो ये चार बुनियादी बातें सामने आती हैं निकाह: माली हैसियत और उसकी खूबी, चाहे वो हुस्न आप जाहिरी की बात कर रहे हों या बातनी की बात कर रहे हों। हस्ब की बात आती है कि खानदान कैसा है, किस हैसियत का, किस शोहरत का मालिक। फिर चौथा हिस्सा फरमाया दीन, यानी उसका मानना क्या है, उसका ईमान क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और दीन को तुम लोग इख्तियार करना, क्योंकि दुनिया में ये देखते हैं हम अपनी जिंदगी में कि जहां दोस्ती हो उसके मुताबिक बंदा ढलता चला जाता है। जिस तरह के दोस्त हों वो न सिर्फ पहचान बनते हैं बल्कि मिजाज में तब्दीली का सबब बनते हैं, इसीलिए बुरी सोबत से मना किया गया है। अच्छी सोबत इख्तियार करने की तरगीब दी गई है कि वो वक्त जो अच्छी महफिल में होगा उसमें खुद अच्छा नहीं करोगे तो अच्छा सुन लो, कहीं बुरी महफिल में तुम खुद बुरा नहीं कर रहे तो जो बुराई गिर्दो पेश हो रही है उसके असरात तुम पर पड़ रहे हैं। इसी तरह हदीस शरीफ में एक दूसरी जगह अच्छी और बुरी सोबत के हवाले से इरशाद फरमाया गया कि अच्छी सोबत की मिसाल ऐसी है कि जहां इत्र बिकता हो, खुशबू की दुकान, और बुरी महफिल की मिसाल ऐसी है कि जहां लोहा तापा जाए, जैसे लोहार की दुकान है कि वहां हर वक्त आग है। तो जहां खुशबू है तुम खुशबू न भी खरीदो न भी लगाओ, तो वो खुशबू, चूंकि वो जगह मुअत्तर है, उस खुशबू में रहोगे जितनी देर रहो उसका असर तुम्हारे कपड़ों तुम्हारे वजूद पर आएगा, मिजाज तक आएगा। इसी तरह जहां आग जल रही है वहां बैठोगे, कोई चिंगारी उठेगी तुम्हारा कपड़ा भी जला दे, न तुम्हारा कपड़ा जले तो जितनी देर बैठे हो तपश में हो धुएं की तकलीफ में बैठे हो। तो जब बंदा अच्छी जगह रहता है तो वहां से अच्छाई सीखता है, मिजाज उस तरफ बदलना शुरू हो जाता है, ढलना शुरू हो जाता है। बुरी सोबत होती है तो बुराई जो है उसमें बंदा जो है डूबना शुरू हो जाता है, उसका मुर्तकिब होना जो है वो इर्तकाब जो है उसका खतरा होता है कि बंदा मुर्तकिब ना हो जाए। तो वो शख्स या वो औरत जिन्होंने आपस में सारी जिंदगी बसर करनी है वहां नहीं जरूरत, हर भली बुरी बात उन्होंने आपस में डिस्कस करनी है, आपस में मुशावरत करनी है हर मामले हर माजरे पर। तो वो सोबत कैसी होनी चाहिए? तो वो बेईमान सोबत होगी तो क्या वो नुकसान नहीं करेगी? और जो बुनियादी मुआहदा है खातून और मर्द के नाम में निकाह का, वो अल्लाह के नाम पर है। तो जो मुशरिक होगा काफिर होगा वो अल्लाह करीम को तो मान नहीं रहा, तो मान नहीं रहा तो वो ऐद कैसे होगा? फिर वो संग और वो दोस्त वो रिश्ता वो मकाम जिसमें खुद ताफुन है उससे तुम्हें भलाई कैसे हासिल होगी? तो इसलिए जब बात निकाह के हवाले से आती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और तुम लोग दीन को चुनना, यानी वहां दीन हो। कितने लोग मशवरा करते हैं बच्चों के रिश्तों के हवाले से, तो मैं उनसे ये जरूर अर्ज करता हूं कि ये जरूर देखें कि दीनी पहलू में आपकी और उनकी निस्बत क्या है, ये जरूर देखें कि आपका और उनका जो खानदानी मिजाज है वो क्या है, आप ये जरूर देखें कि आपकी और उनकी हैसियत क्या है, और कोशिश करें कि चीजें जो 70% है, अब हम क्या कहते हैं कि 100% हर कोई मेरी बात पर पूरा हो, कोई किसी की 100% पर पूरा नहीं होता, तो 50% से जितना जायद होते जाएंगे उतना बेहतर होता है। लेकिन देखने की निस्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाई है वो दीन फरमाया है। तो दुनिया के असूल देखते हो, अपने से नीचे रिश्ता दोगे उसे तकलीफ होगी, अपने से नीचे रिश्ता जो है दोगे तो उसे तकलीफ होगी, और अपने से ऊपर से रिश्ता लाओगे तो जहां उसे तकलीफ होगी वो तुम्हें भी तकलीफ। ये कहना कि सारा कुछ अकल से है, नहीं, जो अकल अल्लाह ने दी उसे बुरुए कार लाओ, दुनिया के असबाब को असबाब तक इख्तियार करो, फिर मामला अल्लाह के सपुर्द करो। और तीसरा पहलू जो अर्ज करूंगा वो ये है कि जो जहां निकाह की और रिश्ते की बात आती है, हैरान कुन सूरत ये है कि बच्ची के रिश्ते की तलाश तो है, बच्चों के रिश्ते नहीं मिल रहे। क्यों? गौर फरमाए, हमने अपने खानदान बखेर दिए हैं, हर कोई अपने कुफ से दूर हो गया है। तो जब दूर हो तो किसी को जानते नहीं, तुम्हें मालूम नहीं, तो ये मसाइल तो आएंगे। अब जो जानते हैं उनमें हम बेशुमार खराबियां जो है उनका बयान करते हैं। देखो ये कि खराबी अच्छाई और बुराई दोनों को देखो, कमी बेशी दोनों को देखो, अगर बेहतरी निस्बतन ज्यादा है तो वहां गुजारा हो सकता है। तो जहां आपको कुछ मालूम नहीं और जब वास्ता पड़ जाए तो हर शायद सामने आ दिया, तो फिर इसी माशरे में बंदा बोल नहीं सकता, गुजारा करना पड़ता। अल्लाह करीम हमें तौफीक अमल अता फरमाए। और ये जो बुनियाद है ईमान है, और जहां ये फरमाया गया ना निकाह ईमान लाने तक, तो निकाह ईमान लाने तक तो ईमान अमल तक आते हैं। तो अल्लाह करीम हमें बहसियत मियां बीवी जिनका निकाह उसके नाम पर है, जिनका निकाह जिनका अहद अल्लाह के नाम पर, हमें ये तौफीक अता फरमाए कि हमारी जिंदगियों में दीन इस्लाह, ताकि हम औलाद की तरबियत कर सकें, ताकि ये तरबियत मुआशरे का हिस्सा बन सके, ताकि हम जो हमारी जिम्मेदारी है उसे अदा कर सकें। क्योंकि अल्लाह करीम का हुक्म जो है उसमें हिकमत है, तो उसकी एक हिकमत का एक पहलू ये भी है कि जो जहां है उसने क्या किया, जिसे जो अता फरमाया, जो हैसियत अता फरमाई, उस सारे में उसका किरदार क्या था। अल्लाह करीम दीन के समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।